You are listening to Rainbow Diaries podcast with Mandy and Kabir.
Hi Cash, welcome to Rainbow Diaries, India ka ikalota LGBTQIA+ radio show and podcast. Hum har hafte nayi kahaniyan dhoondte hain, inspiring kahaniyan dhoondte hain, heartwarming kahaniyan dhoondte hain. Your story is one amazing story. तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आज जुड़े हो.
थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी.
यू आर सच अ फन लविंग गुड लुकिंग पर्सन, बट आई वांट टू आस्क यू, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट को एक सर्टेन नजरिए से देखा जाता है, राइट?
या उनको लगता है कि वो ऑलरेडी इस कंट्री में डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं,
लाइक देयर अ माइनॉरिटी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है. सो हाउ डिफिकल्ट वाज दिस? आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न्स आर प्रीटी ओपन माइंडेड.
प्रीटी ओपन माइंडेड.
या आपको लगता है कि जजमेंट मिलता है, आपको बुलिंग झेलनी पड़ी?
लाइक फर्स्ट थिंग, तो जैसे कि हम बाहर से जब यहाँ पे आते हैं दिल्ली में, तो नेपाली लोग हो गए, जो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न लोग हुए, उनके लिए यहाँ पे बहुत गंदी सोच है लोगों के लिए कि ये लोग बस सेक्स वर्क करने आते हैं यहाँ.
यू राइट.
हमारे ड्रेसिंग सेंस को देख के, जो हमारी लाइफस्टाइल है, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, हम कपड़े अच्छे पहनेंगे.
हाँ, करेक्ट.
तो वो देख के लोग सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पे बस सेक्स वर्क करने आते हैं और यहाँ पे गंदगी मचाते हैं. और प्लस मेरे लिए तो वो टैग भी था सेक्स वर्कर का, प्लस मैं ट्रांस पर्सन, तो उनको बहुत नजर है इतना गंदा. जब मुझे घर लेने में इतनी दिक्कत आती थी, वो लोग बोलते तुम सेक्स वर्क तो नहीं करोगे, तुम्हारे घर में रोज लड़के तो नहीं आएगा, ऐसे उनकी मतलब सोच थी. मतलब हमारे लिए बहुत, मतलब दिल्ली में बहुत मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, एक तो नेपाली नॉर्थ ईस्ट से प्लस ट्रांस पर्सन, तो उनकी सोच गंदी है. और हमारे उधर तो मतलब इतना नहीं है, जैसे कि मेरी फैमिली भी इतना नहीं करती है, बट होती है कहीं ना कहीं की ऑफकोर्स की हमारा एक मतलब बच्चा, उसने अपनी अपनी लाइफ चुन ली है, तो कहीं ना कहीं लगता है घर वालों को. हमारे यहाँ पे ओपन माइंड है कि तुम खुद कमाओ, खुद खाओ, सब चीज खुद करो, डिपेंडेंट मत रहो.
हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मतलब बचपन में जब लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और तुम्हें डॉल के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो क्या क्लास में, स्कूल में बच्चे एक्सेप्टिंग थे कॉलेज में, या फिर बुलिंग झेलनी पड़ती थी इन द नॉर्थ ईस्ट?
बिल्कुल नहीं. मैं तो मतलब शुरू से मैं अकेली ही रही हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले हैं शुरू से दिल्ली में ही रहे हैं, तो मैं अपनी दादी के साथ ही रही हूँ, तो ऑफकोर्स उनके साथ ही रहती थी. और मेरा छोटा भाई था घर पे, तो भाई तो खेलता था, मैं तो अंदर ही रहती थी घर में, काम ही करती थी, मैं तो पूरा काम ही करती थी घर का, प्रॉपर घर संभालना जिसको बोलते हैं ना. दादी तो कर नहीं पाती थी, तो घर साफ करना, खाना बनाना, कोई गेस्ट आए उनके लिए करना.
यह तुम बहुत ही क्यूट हो.
में मतलब मेहमान नवाजी बहुत चलती है.
अच्छा.
खाओ या ना खाओ, टेबल सजाओ, तो मुझे सब चीज करना पड़ता था, चाहे खाओ या ना खाओ, टेबल सजाना ही पड़ता था. तो लोग बोलते थे कि मतलब तुम्हारा पोता तो मतलब क्यों ऐसा है, कुछ और काम क्यों नहीं करता, ऐसे ऐसे बोलते थे.
तो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी माँ और बहुत बड़ी एक दीदी बहन छुपी हुई है, जिसके सबके काम करती रहती हो तुम. हाँ,
देख के ऐसा कोई जज नहीं करेगा कि ऐसे करती होगी, बट मैं अंदर से वही हूँ. मतलब कोई भी मुझे देखेगा ना एक बार, को ये सोचेगा कि तो बहुत मॉडर्न होगी, एटीट्यूड वाली होगी, कुछ नहीं आता होगा इसको, बस घूमना खाना. बट मैं ऐसी वो हूँ नहीं, रियल में मैं अंदर से बहुत डिफरेंट हूँ.
दिस एपिसोड स्पेशली इज नॉट ओनली अबाउट स्टीरियोटाइप्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी, बट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल. एंड दिस इज ट्रू. जब तुमने ये बोला, मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली में कितने सारे नॉर्थ ईस्टर्न लोग आते हैं, कितने तरह के काम करते हैं. एंड यू आर राइट, एक स्पेशली लड़कियों को देख के,
ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, ये लड़कियां
मसाज हाँ.
ये लड़कियां मसाज पार्लर में ही काम करती हैं, इनका काम ही है सेक्स वर्क, दे आर लुकिंग फॉर अटेंशन, यू नो, स्टफ लाइक दैट. सो दैट एटीट्यूड इज देयर एवरीवेयर.
और अगर क्लब में चले जाओ तो लड़कों को लगता है कि इनके साथ फ्लर्ट कर लो, ये तो सो ही जाएंगे आपके साथ.
एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इंडिया के बंदों में टुवर्ड्स वुमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज दे लुक मॉडर्न, दे लुक क्लासी. So, ऐसा लगता है कि अरे, और अगर तुमने किसी को छेड़ा और उसने जवाब दे दिया, तो वो उनसे झिलता नहीं है कि अरे मैं तो एंटाइटल्ड हूँ, तुम नॉर्थ ईस्टर्न हो, तुम आई तो क्लब में इसलिए थी ताकि तुम्हें उठाया जाए.
तो ये बताओ, आई एम श्योर यू गो टू अ लॉट ऑफ पार्टीज विद योर फ्रेंड्स एंड यू ड्रेस अप वेल एंड ऑल ऑफ दैट, तो कैसे रिएक्शन मिलता है लड़कों से? बिकॉज यू कैन इजिली पास ऑफ एज अ वुमन, राइट? इफ यू डोंट टेल पीपल दैट यू आर अ ट्रांस वुमन, किसी को पता नहीं चलेगा.
कभी कभी धोखा भी दिया है मैंने.
Very good. They deserve it.
नहीं, नहीं, पर किस लेवल तक दिया है ये मैं जानना चाहती हूँ, कि कब जाके धोखा उसको
तो चलो था. हमें कुछ कहानियां बताओ.
मैं नई नई आई थी दिल्ली में, मैं 17 साल की उम्र से ही काम कर रही हूँ, यू नो, एनजीओ के साथ मैं शुरू से ही काम करती हूँ. तो उस टाइम मेरे पास ना आधार कार्ड ना दिल्ली का कुछ था, और मैं घर से निकल गई. मैं 12th करके आई थी दिल्ली, फिर मैं घर से निकल गई. मैंने बोला मैंने घर पे, मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऑफिस लेके जाना और आना पापा खुद करते थे यू नो. तो फिर मैंने सोचा मैं अब तो यहाँ पे रह नहीं सकती ऐसे, तो अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला सुनो मेरा काम बाहर हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ. तो घर वालों ने बहुत कोशिश करी, ऑफिस के एड्रेस मांगी, मैंने सब उल्टा दे दिया, मैंने बोला लो एड्रेस.
तो तुम दिल्ली में ही रहती थी जहाँ तुम्हारे घर वाले रहते, पर तुम अलग घर में रहती थी.
हाँ, फिर मैं अपने आप रहने लग गई. फिर उन्होंने बोला चल ठीक है. पहले पहले हफ्ते में एक दिन जाती थी घर कि उनको लगे कि मैं सही हूँ.
तुमने कितना कुछ फेस किया होगा, लोग कमेंट करते हैं, लोग छेड़ते हैं वगैरह वगैरह, तो नजरों से ही तुम्हें इतना वो जलील कर देते हैं कि यू फील लाइक कहाँ कहाँ
कुछ कहानी शेयर करो ना, कुछ हुआ है.
तुम कैसे फेस करती हो, क्या जवाब देती हो?
आती थी जब ऑफिस के लिए तो लोग ना चूचू ऐसे करते थे. एक दिन तो मुझे गुस्सा आया कि मेरे ऑफिस मैनेजर्स मैनेजर भी थे, सब लोग हैं, तो मुझे ही गलत सोचेंगे ना लोग तो कि इसने कुछ करा होगा, ये कपड़े छोटे पहनती है, लोगों का तो ये थॉट जाता है. तो मैं तो एक दिन गई, मैं नई नई थी, मुझे नहीं पता वो कौन है क्या है, मैं तो अपने अकड़ में चली गई. यार मैंने उसे बोल दिया सुनो मेरा ऑफिस यहाँ पे है, मैं यही काम करती हूँ, तो मुझे ऐसे कमेंट पास मत करो, ऐसे म्यूजिक मत बजाओ अपनी मुंह से ऐसे वैसे. तो उनको पता नहीं क्या लगा, उनकी ईगो हर्ट हो गई होगी, उन्होंने कुछ नहीं बोला इसको जाने दे. फिर मैं नेक्स्ट डे, उनको पता था मैं कहाँ से आती हूँ, मतलब वो पार्क के रास्ते से आती हूँ, बहुत घना पार्क है, वहाँ पे बहुत सारों की मर्डर भी हो चुकी है, रेप भी हो चुकी है, तो उस दिन पार्क में ही मिल गया मुझे. तो अब मैं तो बहुत डरती हूँ, अभी भी मुझे डर लगता है, अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं
मुझे ही सुन के डर लग रहा है, मुझे ही डर लग रहा है.
तो ना वो आया और उसने बोला नंबर दे दो. मैं मुझे लगा अब नंबर देना तो चाहिए वरना मैं नहीं बचूंगी. मुझे पता लग गया अब नंबर दे के ही मैं जान छुटा सकती हूँ, या तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं कर लूंगी, बट प्लीज मेरा जान छोड़ दो. एक तो मेरा ऑफिस छूट जाएगा और मेरा सब चीज बर्बाद हो जाएगा. नई नई और आई हूँ, काम भी नहीं है, घर से भी निकली हुई हूँ, कहाँ जाऊंगी. तो मैंने सोचा नंबर ले लेते, मैंने उसको नंबर दे दिया. तो फिर उसने बंदूक निकाला अपने उससे साइड से,
बंदूक.
हाँ,
ओह माय गॉड.
मैं चुपचाप से बैठी, तो उसने बोला मेरे घर चलो. मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी सर, मेरा यहाँ पे ऑफिस है, मुझे लोग गलत सोचेंगे, ये वो करके अब मैं करूंगी तो क्या करूंगी, मैंने नंबर भी दे दी, सब चीज दे दी. अब फिर वो ना मुझे लेके चला गया वहीं पे ऑफिस के आगे. तो उसे लगा मेरा ऑफिस है नहीं है, वो देखना चाहता था कि ये करती क्या है. तो फिर मैंने सबको बुला लिया, मैंने बोला सर मैनेजर को भी बुला लिया. फिर उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया वहां से, और रोज उसके बाद भी कुछ ना कुछ उसके बंदे होते
थे. एक मिनट, तो तुमने सबको बताया तो सबने इसको पुलिस में नहीं दिया आदमी को जो बंदूक लगा रहा है तुम्हारे माथे पे?
उनकी ही वहाँ पे एक अड्डा चलता था, और लोगों का क्या होता है सबसे पहले कि मेरी ही फॉल्ट दिखेगी, उनको ये लगता था मेरी ही
विक्टिम ब्लेमिंग. यस यस यस.
तो एक बात बताओ, फिर ये तो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी वो तुम्हें परेशान करते रहे?
हाँ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ उसके बंदे, वो तो नहीं उसके बंदे जितने भी थे, वो हेड होगा वहाँ का, उसके जो बंदे थे कुछ ना कुछ करते रहते थे. फिर हमारा वहाँ से ऑफिस से शिफ्ट कर दिया हम, मेरी वजह से.
बीइंग अ ट्रांस वुमन जॉब ढूंढना कितना मुश्किल था?
रुलाओगे मुझे. इतना ज्यादा मतलब लाइन्स में भी देती थी, मैंने बहुत रिज्यूमे भेजी, किसी ने मतलब एक रिप्लाई नहीं आया. और मतलब जो डेटिंग ऐप हम चलाते हैं, डेटिंग ऐप में ना मुझे एक सर मिले थे. अभी मतलब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही वो सर थे, वो मुझे अप्रोच कर रहे थे. अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या थी थॉट्स, उनका क्या था मुझे लेके, बट मैंने उनको, क्योंकि वो बहुत उम्र में बड़े थे, मतलब मेरे डबल एज के थे, मैं अभी 21 हूँ तो वो 42 थे. तो उस टाइम पे सर ने मतलब मुझे समझाया, मतलब होता है ना अंदर से, वो भी मदरली थे थोड़ा, उनके अंदर भी था, तो मेरी बेटी बन जा, तो मेरी बेटी बन जा. मैंने बोला हाँ मैं आपकी बेटी ही रहूंगी, और मैं आपको मम्मी बोलूंगी, वैसे बोलते थे.
तो
सो दैट इज सो क्यूट. इन द कम्युनिटी लोग एक दूसरे को ना यू नो दीदी या मम्मी या बेटी के हिसाब से जो है बोलते हैं. एंड पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था कि क्या है, बट आई थिंक कम्युनिटी में ना, बिकॉज आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर वाले नहीं मानते, बहुत सारे लोग होते हैं घर वाले हटा देते हैं, आप अपने ही रिश्ते ढूंढते हो, आप अपनी फैमिली खुद बनाते हो. एंड नाउ व्हेन आई लुक एट इट, बिकॉज मैंने भी इतना कुछ सीख लिया है अबाउट द कम्युनिटी, इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप अपने रिश्ते खुद चुनते हो. रशियन और ईरानियन लोग आते हैं, उनको ये लगता है कि ट्रांस वुमन को जो है हम डेट कर लेते हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके ड्रग सप्लाई करने में.
तो तुमको पेडलर बनाने की कोशिश की गई थी,
तो वो कहानी बता.
अभी भी गूज बम्स आते हैं. एक डेटिंग ऐप में मिला, तो मतलब ऐसी बातें करता था नॉर्मली.
कहाँ से था ये बंदा, कहाँ का था?
अफगानिस्तान.
अफगानिस्तान.
तो बेसिकली क्यूट बंदा था ऑब्वियसली. तो तुमने बोला कि अरे बहुत क्यूट है। हाँ, हाँ, फिर
लड़का सही था, मुझे बहुत इरिटेट करता था पहले पहले तो, फोन करते रहना क्या पता उसका वो चाल था उनका, उसका वो होगा ऐसा कुछ, उनकी कुछ प्लानिंग होगी, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, सब चीज अपडेट करते रहना, जैसे एक बॉयफ्रेंड एक पति करता है।
पति नहीं करते इतना अपडेट, ये जो बॉयफ्रेंड बनना चाहता है वो करता है।
फिर एक दिन मैंने सोचा, उसने मुझे बोला कि मिलते हैं ना, हाँ मैं कभी अकेली नहीं मिलती हूँ, अब मैं डेमिसेक्सुअल हूँ, मुझे अब तक किसी को जानती नहीं, मैं मिलती नहीं हूँ, तो मुझे डर लगता है, मैं अपने फ्रेंडों के साथ ही मिलती हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स भी रहते थे मेरे साथ, तो मैंने बोला मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं फ्रेंड के साथ ही मिलूंगी, तुम कंफर्टेबल है तो ठीक। तो उसने बोला ठीक है, तो मैं मार्केट से आ रही थी, तो मैंने ना सोचा, मैंने दिमाग लगा, मैंने इसको बोलती हूँ, इसका खर्चा करवाती हूँ, क्या पता है रुक जाए। मैंने दुनिया भर के सामान लिख दिया, घर का सामान सब चीज पूरा लिख दिया, लिस्ट बना के भेज दिया, सब लेके आना वरना मत आना। अब वो पूरा ही लेके
चलो
बदमाश लड़की,
थोड़ा फायदा हुआ तुम्हारा। हाँ फिर
अब मैं भी अटैच होने लग गई, जब मेरे घर पे आया था, तो बाद में जब एक हफ्ता गायब हुआ ना, ना फोन ना मैसेज ना कुछ, और एक हफ्ते बाद आया मेरे घर पे फोन करके सीधा दरवाजे के आगे कि मैं घर पे आया हूँ। मैंने बोला तुम एक हफ्ते से कहाँ थे, मैंने पूछताछ करी सब चीज करी, तो वो पता नहीं क्या क्या लेके आया था घर पे, मतलब ड्रग्स नहीं था, कुछ और चीजें लेके आया था, मैं सिलाजी थी सब सप्लाई करने गया था, उसने मुझे ऐसे बोला। मुझे ये नहीं पता था उसका नंबर ट्रैकिंग में है क्या है, या मेरा नंबर भी ट्रैक हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कितना बूज फॉर्म आ रही है मुझे। एक दिन मुझे कुछ फोन आया किसी का, तो मैंने उठाया, तो मैंने बोला और वो लोग नेपाली में बात करने लगे, वो ना नेपाली ही पर्सन थे, क्या पता उनको लगा हम इसकी अपनी कम्युनिटी के लोग से करवाएंगे तो ये कभी सच बोल देगी। उसने बोला कि मैं नेपाली हूँ, नेपाल से हूँ, अच्छे से नेपाली भी बोल रहा, सब चीज कर रहा। फिर ना उसने बातें करते करते मुझे बोला कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने बोला हाँ मेरा एक फ्रेंड है, वो बाहर से है ऐसे वैसे अफगानिस्तान से है। तो उसने बोला अच्छा वो क्या करता है, सब चीज पूछ लिया मैंने बता दिया। फिर उसने मुझे बोला ऐसे लोगों से तुम बात मत करो, ये लोग ऐसे होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, उसने मुझे बहुत बोला। फिर मैं डर गई फोन पे, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर उसने मुझे बोला मैं तो ऐसे काम करता हूँ, मतलब वो रॉ की टीम से था शायद।
तो उस आदमी का फोन आया, उसने बोला है वो रॉ में काम करता है।
हाँ, मैंने बोला ठीक है, मैं मुझे सर इतना मुझे कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज के बारे में, आप ही मुझे समझाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं नहीं तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है, तुम अच्छी हो, तुम अपना काम करो और ऐसा कुछ चीज नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट डे से मैं अब तक उससे बात नहीं करने लग गई, और उन सर ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया आगे से, क्या पता उनको कुछ हुआ होगा, उन्होंने भी मुझे बात नहीं करी फिर उसके बाद। तो उसको भी मैंने फिर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद फिर उसका मुझे मैसेज आया बहुत महीने बाद कि मुझे पैसे चाहिए, मेरा ये हो क्या, मुझे ये जाना है, मुझे यहाँ जाना है, क्या पता उसका फंसने का टाइम आ रहा होगा तो वो मुझे फंसाना चाह रहा होगा, या कुछ भी चीजें हो रहा होगा, क्या पता उसके घर में कुछ होगा, वो मेरे घर पे रखना चाहता होगा
करेक्ट
कि तू ये रख ले, और वो रवाना हो जाए कहीं पे भी जाए। मुझे लगा अब तो मुझे छोड़ना ही चाहिए, मैं फंसूंगी वरना बहुत बुरी तरीके से, मुझे अभी भी कुछ फॉर्म्स आ रही है, मेरे सर भारी हो रहा है बहुत ज्यादा।
सो ही वाज कॉट इन सम केस,
मुझे नहीं पता।
आई थिंक जितने भी लोग स्पेशली LGBTQ कम्युनिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग घर वालों को नहीं बताते हैं, हम कितना देखते हैं डेटिंग एप्स फंसाया जाता है, उन्हें एक्सटॉर्शन किया जाता है, पैसे लूटे जाते हैं,
पीटते हैं उनको,
ठीक है पीटते हैं, देयर सो मच दैट हैपेंस, पर एक ही चीज है कि पुलिस को जरूर बताओ। यू नो हम डर जाते हैं कि पुलिस को नहीं बताएंगे, घर वालों के बात सामने आ जाएगी, ये वो, बट आई एम सेइंग पुलिस को बताना बहुत जरूरी है। हम पढ़ रहे थे कि तुम्हारे गांव वाले जो हैं, तुम्हारे मॉम डैड को बोलते थे कि पैसे के चक्कर में अपने बेटे को हिजड़ा बना दिया, तो ये सब मतलब कैसा लगता था, कैसे रिप्लाई करते थे घर वाले और तुम खुद इस बात पे?
मतलब जब मैं निकली थी ना तो सबको ये लगता था कि ये रेड लाइट में काम कर रही है, ट्रेन मांग रही, क्योंकि हमारे उधर यही होता है, जो मतलब हिजड़ा फैमिली से वो ट्रेन में खड़े होते हैं वो मांगते, तो उनको यही लगता था कि ये भी यही कर रही है, तो उनको ये नहीं पता कि मैं काम भी कर रही हूँ। मेरी दादी रोने लगती थी, मेरी बुआ लोग सब रोने लगते थे कि अभी नहीं आ जा, अब यहाँ पे नहीं आ सकती, घर पे नहीं आ सकती, लोग नहीं आने देंगे, ऐसे सोचते थे वो लोग। तो मैंने भी 2 साल मैंने सब चीज बंद कर दिया था, मैंने अपना फोन, मेरा सोशल मीडिया, मेरा सब चीज मैं दूर रही 2 साल, सब चीज से मैं दूर रही। मैंने बोला मैं जब तक अपने आप को नहीं साबित करूंगी, जब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी किसी को, जब मैं बन जाऊंगी प्रॉपर कि कोई मेरे ऊपर ना हंसे। पहले पहले का लुक्स तो ऐसा होता ना कि लोग हंसते हैं, सब लोग मजाक उड़ाते लुक्स को लेके, कुछ भी चीजों को लेके, जब आप प्रॉपरली नहीं हो जाते हो, तो मैंने सोचा मैं जब तक नहीं होंगी मैं अपना कुछ काम नहीं करूंगी, या मैं अब दिखने में भी अच्छी नहीं होंगी तो मैं नहीं आऊंगी किसी के सामने। तो मैं 2 साल बंद रही। पापा थे, बोले पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे।
हाँ, हमने कहीं पढ़ा कि आपके पापा ने आपकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन।
हाँ, फिर उन्होंने मेरा ऑफिस का जो एड्रेस दिया था मैंने उल्टा दिया था, वो वहाँ पे भी चले गए थे।
बाप रे,
बोला वहाँ पे तो कोई है ही नहीं ऑफिस में, ऐसे बोलने लग गए। फिर उन्होंने बोला क्या पता तुझे लेके गए हो, मोहरा बना के हिजड़ा फैमिली आके तुझे लेके चले गए हो, तुझे कमाने के लिए लेके गए हो, क्या पता तुझे जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसे बोलते थे मुझे। घर मैंने बोला नहीं, मैं अपने आप ही गए हूँ, मैंने अपने आप ही चुना है ये लाइफ, ये मैंने कपड़े अपने आप ही पहने हैं, मुझे किसी ने नहीं पहनाया है। तो मम्मी रोने लग गई थी उस टाइम की क्या कर लिया, सही था ये वैसे वैसे। मैंने बोला मैं ऐसी ही जीऊंगी, मैं कब तक घुटके जीऊंगी, इफ मैं उस भेस में रहती तो मैं घुटके रहती पूरी जिंदगी भर। अब इस भेस में मैं खुश हूँ, और मैं चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं इसी भेस में ही करूंगी सामना। उस भेस में मैं दुख में रहती थी, इस भेस में मैं खुश भी हूँ दुखी भी हूँ, बट मैं फेस कर सकती हूँ उस दुख को।
एटलीस्ट तुम कंफर्टेबल हो अपने आप से, क्योंकि सुख दुख तो आता जाता रहेगा।
बेसिकली पेरेंट्स को शॉक लग गया था।
It was so good talking to you. All the best.
Have a great day. Thank you so much for having me.
Bye-bye.
You are listening to Rainbow Diaries podcast with Mandy and Kabir.